તારીખ 31/3/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 9.
પોતાના સ્વરસ્તે આત્મરસ્તે નિરંતર સંચેતન જ્ઞાનનું જ્ઞાનમાં જે નિરંતર ધારાવાહી અનુભવન છે, એનાથી જ્ઞાન અતિશુદ્ધ થઈને પ્રકાશે છે, નિર્માણ થઈને પ્રકાશે છે. કેવળ જ્ઞાન થવાની વિધિ છે.
કેવળ જ્ઞાન અજ્ઞાન ચોથા ગુણ સ્થાન વાળો જેવું
પૂર્ણ શુદ્ધ થવાનો પ્રકાશ માનો એક માત્ર પ્રકાર છે.
સંચેતન
અનુભવન જ્ઞાન અનુભવન તે શુદ્ધ દ્રવ્ય ના અનુભવન સ્વરૂપ હોવાથી તેને જ પરમાર્થ ગુણ છે. આવું જે જ્ઞાન નું અનુભવન શુદ્ધ દ્રવ્યના અનુભવન સ્વરૂપ છે. પર્યાય આવે છે પ્રશ્ન, જ્ઞાન નો અનુભવ તો પર્યાય ની વાત થઈ
ને,
તો એમણે 414 માં સ્પષ્ટ કર્યું છે. ગાથા 414 માં જ્ઞાન નો અનુભવન તે શુદ્ધ દ્રવ્યના અનુભવન સ્વરૂપ હોવાથી તેને જ પરમાર્થ ગણો છે. જ્ઞાન નું જ્ઞાનમાં અનુભવન તે પારમાર્થિક ગણો છે, એમાં જ આત્મકલ્યાણ છે, એમાં જ શુદ્ધ થવાનું છે, એ જ સાચો રસ્તો છે.
અનુભવન પર્યાયમાં થાય છે, લેકિન સાદ્રશ્યતા હોવાથી જેવો અનુભવમાં આવી રહ્યો છે એવો જ સંસર્ગ દ્રવ્ય હોવાથી
એમાં શું છે, પછી દ્રવ્ય પર્યાયના ભેદ નિરસ્ત થાય છે. એક્ચ્યુઅલ તો શું છે કે દ્રવ્ય પર્યાય તો એક વસ્તુના કોન્સ્ટિટ્યુશનને સમજવા માત્ર એટલા પૂરતો જ એ વિષય છે. એથી આગળ એ વિષયને કાંઈ અપેક્ષા જ વિચારવાની જરૂર નથી. પછી એ દ્રવ પર્યાય નો વિષય વચ્ચે ક્યાં લેવાનો રહે છે? કોન્સ્ટિટ્યુશન સમજી લીધું, લક્ષ વેદન નો વિષય સમજી લીધો, જેનું લક્ષ છે એનું વેદન નથી, વેદન છે એનું લક્ષ નથી, એ સંબંધીના વિપર્યાસ પ્રસ્થ થઈ જાય છે. હવે તો જે વિષય ચાલે છે એમાં અધ્યાત્મ રસ કેવી રીતે ઉભો થાય છે, જે કઈ કથન છે એની અંદર અધ્યાત્મ રસ શું છે અને એ કેવી રીતે પોતાને અનુસરણ કરવા યોગ્ય છે, એક દ્રષ્ટિકોણ એપ્લાય કરવાનો રહીએ છીએ. બીજા બધા દ્રષ્ટિકોણને વચ્ચે લેવાથી અધ્યાત્મ રસમાં વિક્ષેપ ઉભો થાય. જે જ્ઞાન અનુભવન છે પરમાર્થ પણ છે કે વિકલ્પ લંબાવવાની વિચારધારા પદ્ધતિ નથી. આત્મશુદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે એ અધ્યાત્મનો વિષય છે કે આત્મશુદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે. તો કે આત્મશુદ્ધિ કેવી રીતે છે કે જ્ઞાનાનું ભવનથી છે, જ્ઞાનાનું ભવનથી આત્મશુદ્ધિ છે. જે જ્ઞાનનું જ્ઞાનમાં વેદન છે એનાથી આત્મશુદ્ધિ છે. જ્ઞાન અતિશુદ્ધ થઈને પ્રકાશે છે કેવી રીતે, પોતાના સ્વરૂપ સંચેતન ને કારણે. જ્ઞાનમાં સ્વપણે પોતાપણે ચેતવું અને કારણમાં પોતાપણે ચેતવું બે જ પ્રકાર છે. જ્ઞાન ને છુપીને રાગ ને સ્વપણે ચેતે, કાં તો જ્ઞાનમાં સ્વરૂપ સંચેતન કરે. બે પરિણામમાં બે થી ત્રીજો પ્રકાર તો છે નહીં, કાં તો આ પ્રકાર નહીં કાં તો આ પ્રકાર. નિરંતર સંચેતન એ આત્મશુદ્ધિનો ઉપાય છે. આત્મશુદ્ધિનો ઉપાય તો પૂર્ણશુદ્ધિનો ઉપાય એક જ ઉપાય છે. ત્રણેય કાળે આ માર્ગમાં બીજો વિકલ્પ નથી, બીજો વિકલ્પ નથી. બીજા પ્રકારે કઈ થતું હોય એમાં કોઈ પરિસ્થિતિ નથી. સાયન્સ છે, આત્મા સંબંધીનો સાયન્સ છે.
જે સંચેતનથી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ્યો, આ સંચેતનની વૃદ્ધિથી મોક્ષ પ્રગટ્યો. આ સંચેતન જે વિશેષ આવિર્ભાવ
જ્ઞાનસ્ય નિરંતર સંચેતનયા જ્ઞાનમ અતિમ શુદ્ધમ પ્રકાશતે, આટલા સંપીડા છે. જ્ઞાનસ્ય નિરંતર સંચેતનયા જ્ઞાનમ અતિમ શુદ્ધમ પ્રકાશતે. જ્ઞાનના નિરંતર સંચેતનથી જ્ઞાન અતિશુદ્ધ થઈને પ્રકાશે છે. આત્મશુદ્ધિનો આ મહાન સિદ્ધાંત છે અને ત્રણેય કાળે આ ઉપાય છે, એમાં કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી. કુદરતી ફલો કરશે, તો સબ પકડ દે પડશે ને. એટલે મતલબ ઇસમે તીન કાલ મેં ઇસ માર્ગ મેં દૂસરા કોઈ વિકલ્પ નહીં. સર્વ ઉપદેશ કા યહી તાત્પર્ય હૈ. જીતના ભી લંબા ચોડા જીતના ભી ઉપદેશ તાત્પર્ય ઇતના હૈ. જો જીવ જ્ઞાન કા મતલબ સ્વયં કા પર રસ કે વજહ સે સંચેતન નહીં કરતા હૈ તો વો રાગ કા યા ઉદય કા વેદન અધ્યાસિત હોકર કે દુખી હોકર કે કિયા બિના રહેગા નહીં. અનિવાર્ય રૂપ સે આપણે દુઃખ કા અનુભવ કરના પડેગા.
ઉસકો સંચેતન તો કોઈ કોઈ કરના હી
હૈ. દૂસરા તો વો તો ચેતન પદાર્થ હૈ, સંચેતન તો કરેગા હી કરેગા. સચેતન ક્યાં કેસે બદલેગા? યા તો સ્વયં કા કરે, યા તો રાગ કા કરે. દુખી હોકર કે અધ્યાસિત હોકર રાગ કા કર નહીં સકતા.
બસ
અધ્યાસિત હોકર કે ઇસલિયે સમજ લિયા, અધ્યાસિત હોકર કે બિના રહે નહીં સકતા. अनिवार्य रूप से उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, या तो ये स्वयं का संचेतन से सुख को भोगे या तो राग का संचेतन से दुख को भोगे। क्योंकि चेतन का चेतने का गुण सदा ही प्रेरणाशील है, यही तो बात क्योंकि चेतने का गुण सदा ही परिणामशील है। ज्ञान अंतर्मुख या स्वसम्मुख होने से या तो हमें तो स्व संवेदन प्रसिद्ध हो या प्रकट हो, ज्ञान का ज्ञान में वेदन तो होता ही रहता है, लेकिन स्वरस पूर्वक है तो यही विधि है, रागरस पूर्वक है तो अत्यास हो जाएगा, ज्ञान के ज्ञान में वेदन आएगा नहीं, अत्यासित भाव से दुख का वेदन हो जाएगा। उल्टा होकर
राग का जो अत्यासित रूप से जिसे तो सही मन हमारे अनुभव को देखते हैं तो हमको तो सही लगता है कि वो राग का संचेतन हो रहा है, ज्ञानियों की दृष्टियों में ये है कि राग का संचेतन उनको अध्यासित हो रहा है।
राग का संचेतन अज्ञान दशा में अध्यासित रूप से है, जैसे हम लड्डू खा सकते हैं, जैसे हम साता वेद सकते हैं, ठंड को गर्मी को वेद सकते हैं, अध्यासित है।
तो और बहुत दूर की आगे की बात होगी, राग में आप अध्यासित करते तो वो बात तो और आगे की होगी।
राग में अध्यासित होने से राग का विशेष अध्यासित हुए बिना रह नहीं सकते, नेचुरली जो राग है उसका विषय पर चला ही जाएगा अध्यासित।
ये अनाधिकाल की भूल हो गई।
ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस इसलिए आवश्यक है कि इस बात का अनुभव पद्धति से पता चले। जिस बात का अनुभव पद्धति से पता चलता है उस बात का विचार पद्धति से पता नहीं चलता है, तो विचार को लंबाने से कोई पकड़ने चीज नहीं है। विचार से समझना चाहे तो कुछ आउटलाइन मिल सकती है, यथार्थ रूप से सभी टेक्निकल साइड में ऐसा ही है कि वहां तक जहां तक प्रैक्टिस का प्रवेश नहीं हो बात समझ में नहीं आती। जैसे साइकिल में बैलेंस कैसे रखना, पहले इसका प्रैक्टिस किए बिना बात समझ में कैसे आएगी। तो समझने का पद्धति में वैचारिक पद्धति में काफी मात्रा में लिमिटेशंस है, उस लिमिट के आगे इस विषय को स्पर्श नहीं कर सकते। रोटी बनाने में बेलन बनता है, बेलन उसको इतना बैलेंस रखना है कि कहीं जाड़ी नहीं कहीं पतली नहीं हुए, तो घुमाने के प्रैक्टिस किए बिना ये बात को कैसे समझ में आएगा, कैसे बैलेंस रखना, जहाँ तक प्रैक्टिस नहीं होगी वहाँ तो बात समझ में नहीं आएगा। समझने का भी ये एक तरीका है जो प्रैक्टिस है, जैसे विचार एक तरीका है वैसे प्रैक्टिस एक दूसरा तरीका है। विचार में तर्कणाएं चलती है तो उसमें विषय प्रत्यक्ष होता है, प्रैक्टिकल साइड में जो विषय है एकदम प्रत्यक्ष होता है,
लिए सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए जीव आत्मा को जानने के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है।
तो कितना भी विचार करें, ये मन का जो पर्दा है, पर्दा बीच में रहता है, चीज परोक्ष रह जाती है।
नहीं, लंबा चला है
मन, खुद ही पर्दा है। जैसे मुझे यहाँ कुछ देखना है तो मैं इधर देखता हूँ, तो जो मन है उसमें उपयोग उधर है और आत्मा उधर नहीं है। आत्मा उपयोग यहाँ से ऐसा घूमता है तो आत्मा सामने समक्ष ही है, स्वसन मुक्ता में तो आत्मा समक्ष ही है। जिस दिशा में जो चीज नहीं है उस दिशा में कितना भी आप विचार कर करके ज्ञान को लंबाते जाओ, दूर ही दूर जाओ, जितना विकल्प ज्यादा उतनी दूरी ज्यादा, दिशा तो उल्टी है। ध्यान कर उस दिशा में कितना ही लंबा हो कितना ही लंबा, तो अंतर तत्व से दूर जाने की बात है। तो
विचार भी संक्षेप आ जाता है, विचार करने में भी संक्षेप आ जाता है। जैसे कि कोई प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से कोई बात को सोचे विचारे, जैसे कोई मिठाई खा रहा है तो उस पर जैसे ऐसे जाता है कि मेरे ज्ञान में क्या हो रहा है, वो भी शब्द रूप रह जाता है उसके बाद। है कैसे, जैसे ज्ञान में क्या हो रहा है ऐसा एक विचार आया तो बस वहां तक बात रह जाता है, कोई शब्द रूप रह जाता है, उसके आगे भी कोई सूक्ष्म का धारण नहीं करता है। इसका क्या कारण है?
एक विचार से दूसरा विचार को धक्का देना, तो उतना इतना उसमें यहाँ तो ज्ञान अपने को ग्रहण करे, ज्ञान क्या हो रहा है तो ज्ञान अपने को ग्रहण करे। क्या हो रहा है, मैंने खाने का दृष्टांत है,
कैसे करें वो
जानता है ज्ञान, ज्ञान में कुछ प्रवेश होता है, ज्ञान गेय से भिन्न रह करके सिर्फ मिठाई के स्वाद को, तो स्वाद का है उस हाथ तो जो वेदन है वो स्वाद का है, तो स्वाद को भिन्न रह करके जानता है या ज्ञान में स्वाद आता है, उतनी तलाश करनी है।
वहीं पर प्रॉब्लम है,
तलाश करने से पहले तो वैसे ही तो ज्ञान का पता नहीं चलेगा। जब हम खो बैठे हैं हमारे ज्ञान वेदन को, सुनो तिरुमत हो गया, मतलब क्या हुआ कि हम खो बैठे हैं हमारे ज्ञान वेदन को। अब जो चीज खोई हुई है तो तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, उसी ढंग से ज्ञान काम करता है, तो उसी ढंग से पहले प्रैक्टिस चालू करना है। इसलिए तो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान वेदन है, पूछते हैं कि आप कहते हैं, भले भले ही कहते हो होगा शायद, तो पता नहीं चलता, ठीक है बात। फिर कहते हैं पता नहीं चलता लेकिन कहते हैं कि वहीं है, नहीं पता चलता, नहीं पता चलता हमको बताएगा, नहीं पता चलता है, लेकिन जब वहीं है तो खोजना भी वहीं है। सुगमता उतनी है कि चीज खोई हुई अंधेरे में नहीं खोई है, प्रकाश में। अगर अंधेरे में खोई होती तो दिक्कत रहती कि क्या कैसे खोजे, अंधेरा है, लेकिन ज्ञान प्रकाश में ज्ञान को खोजना है। ज्ञान में ज्ञान को खोजना है, राग में ज्ञान को खोजने को कहे तो वो तो अंधेरा है, ज्ञान में ज्ञान को खोजना है, प्रकाश में तो
खोजना है।
उस समय इस प्रयोग के समय में जो ज्ञान जो है वो रस पर मिठाई पर नहीं जा करते, ज्ञान पर जाता है। तो ऐसा नहीं कि क्या उस ज्ञान पर जाने के कारण वो ज्ञान का भाव मुख्य हो जाता है और रस का स्वाद नहीं आता।
ऐसा ही होना चाहिए, होना तो ऐसा ही चाहिए कि जगह जब उपयोग मिठाई के स्वाद से हट करके ज्ञान चलते ज्ञान में ये व्यतीत हुआ, वो नहीं चालू ज्ञान में अपने पर गया, बस बात खत्म, सारी परिस्थिति पर रखती है। फिर ये नहीं लगता है कि मिठाई का वेदन आता है, मिठाई का स्वाद जानने में अवश्य आता है कि इसमें मिठापन है, पर्टिकुलर टाइप का खास प्रकार का मिठापन ऐसा है, जैसे पपीता में पपीता जैसा है तो गन्ने जैसा है, तो मिठाई में मिठाई जैसा है, सभी मिठाई स्वाद के दे, लेकिन अपना अपना पर्टिकुलर स्वाद रहता है, कैसा है वैसा पता चलता है, लेकिन आता है वो बाद में रहती है, जानने में कोई दोष नहीं।
वहाँ मिठाई का रस तो टूटता है, अगर
टूट ही
ज्ञान का वेदन तो
हाँ वहाँ से उपयोग अपने और आया स्वयं के और, तो ये तो रस टूटने वाला है, तो ये तो प्रैक्टिस करना है, रस तोड़ने के तो प्रैक्टिस करना है, ये रस टूटने से ही ज्ञान में विशुद्धि हो रही। निर्मलता ऐसे याद राग रस टूटने से, विभाव रस टूटने से तो ज्ञान में निर्मलता अति स्वच्छता आती है। क्योंकि जो राग रस है वही कसाई रस है, वही मलिनता उतरनी पड़ी है, जितना राग रस तीव्र उतनी मलिनता तीव्र, जितना मंद मंद।
इसका नाश कैसे होगा, मंद तो नाश कैसे होगा,
बस कमजोर हो जाने से अभाव हो जाएगा, पहले कमजोर होती है ताकत टूटती है, तो जिसकी ताकत गई तो मरने के लायक हुआ, मरने के लायक हुआ वो मरेगा, फिर तो उसकी कोई चिंता नहीं, जब लाइन पकड़ने में आई तो फिर कोई चिंता नहीं, पीटी है उसका रस पकड़ने में आता है, आ जाती है टेक्निक, फिर तो जितनी प्रैक्टिस है वो इतना आग बैठ जाता है, हर काम में क्या है, पहले रोटी बनाने में सावधानी लगती है, फिर तो बातें करते करते रोटी बन जाती है, पहले साइकिल चलाने में सावधानी रखते हैं कि हम इधर नहीं डले इधर नहीं डले, फिर तो बात करते करते पहले स्लिप होते, उपयोग ही नहीं लगा ऐसा लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बस प्रैक्टिकल ज्ञान उसमें सामर्थ्य बहुत है, तो यहाँ से तो सामर्थ्य का पता चलता है कि अनंत सामर्थ्य क्या चीज है, जब सामर्थ्य प्रैक्टिकल साइड में आता रहता है तो यहाँ से पता चलता है कि सामर्थ्य क्या चीज है, सामर्थ्य का ज्ञान वैसे नहीं होता है, क्योंकि ये तो सामर्थ्य तो कोई व्यक्त चीज नहीं है, वो अनंत सामर्थ्य है आत्मा में, वो तो अव्यक्त है, तो ये प्रैक्टिस में सामर्थ्य आया तो पता चलता है कि सामर्थ्य क्या चीज है, इसका भाव भाषण होता है अपने अनुभव से, जिसको ये पता चला कि अनंत सामर्थ्य है तो कॉम्प्लेक्स बदल जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मान जाता है अपने आप, वहां तक देखता रहेगी इंफीरियरिटी जाएगी, करे थोड़ा मन का अच्छा दिखे, जैसे नीलम होता है, माणिक होता है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका कलर होता है, निर्मलता के साथ। तो आँख को भी सुहाता है दिखने में, और उसकी प्राप्ति भी आसान नहीं, क्योंकि विश्व में उसमें बहुत कम चीज मिलती है, गिनती में देखो तो आदमी तो अरब की संख्या में है, लेकिन ये चीज तो सैकड़ों भी की संख्या में है, प्राप्ति दुर्लभ है। तो जगत में रत्न की कीमत बहुत गिनने में आती है, इसका यही कारण है। एक तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा उसका अवेलेबिलिटी कम है, बहुत कम अवेलेबल है, तो इसलिए उसकी कीमत है। दूसरा तो ऐसी चीज लाखों में मिलती हो तो फिर तो किलो के हिसाब से उसका भाव होता है, जो कैरेट के हिसाब से होता है वो किलो के हिसाब से हो जाता है। अवेलेबल हो तो अवेलेबल नहीं, इसलिए कैरेट का हिसाब होता है। कैरेट मैंने 1 ग्राम का सोना, जो ग्राम है 10 ग्राम में से 1 ग्राम, जैसे 10 ग्राम मैंने 11.25 ग्राम का है, 1 तोला होता है, 1 तोला का 11वां भाग 1 ग्राम, और 1 ग्राम का 100वां भाग 1 सेंट, सेंट का भी इसमें हिसाब होता है, सेंट तक हिसाब होता है, 1 ग्राम का 1000वां भाग हिसाब में, तो 1 ग्राम का 1000वां भाग का उसका हिसाब किताब बैठना पड़ता है। क्यों अवेलेबल नहीं है? एक तो चीज अच्छी दिखती है तो पत्थर स्टोन है, कलर्ड स्टोन, नथिंग एल्स, कलर स्टोन होने पर भी अवेलेबल नहीं है स्वच्छ, तो जगत में उसकी कीमत गिनने में आती है। तो भी वह कल्पना मात्र रम्य है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक कल्पना है, वो दूसरा कुछ नहीं है, उसमें सुंदरता की एक कल्पना बिठाता है। जैसे कोई जंगली आदमी जंगल में रहते उसके हाथ में आता है तो उसको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो तो पत्थर समझ के फेंके भी, पक्षी को भी उड़ा दे रहे हैं। ये कल्पना मात्र रम्य है, जो कीमत लाखों के गिनते हैं, इसका तो 25 लाख रहता है एक पीस का, क्या क्यों इतना बहुत सुंदर है, तो कल्पना मात्र रम्य है, कितना एंगल है, मात्र कल्पना, मात्र आँख को ठरना, ठरना मैंने अच्छा लगना, एक गुजराती भाषा में जो है हिंदी में क्या होगा, मतलब
आँख दिखती है,
देखने से कुछ सुहाता है, सुहाता है अपने, हमारे जैसे कोई अपना मित्र हो, इनका कोई लड़का ऐसा हो, अच्छा लड़का है, देख के हमारे तो आँख ठरती है, ऐसा कहते हैं, ठरती मतलब क्या है, स्वाद आया आपको, अच्छा लग गया, ऐसा जैसे ग्रीनरी होती है
आँख को मोहित करती,
ग्रीनरी होती है, जैसे नेचुरल ब्यूटी जिसको अपन कहते हैं, कश्मीर में या कहीं भी पहाड़ी हो, उस टाइप की ग्रीनरी होती है कि उसका कलर इतना ग्रीन अच्छा होता है कि आँख को ठंडक जैसे मिलती हो, आँख को कुछ ठंडक मिलती हो, वैसे उसको कहते हैं आँख ठरती है, गुजराती में आँख ठरती हो, ऐसा कल्पना मात्र ठरवाने खूबी ने ली, खूबी खूबी परंतु अनादि सर्वत्र दुर्लभ, जिसमें आत्मा ठरता रहे, ठरी रहे, जम जावे शांति में, इतना शांति मिले इसमें आत्मा ठरता है, ऐसा सत्संग रूप साधन, सत्संग से ये हद में तो वहाँ पहुँचते हैं, बिना सत्संग पहुँचते नहीं। तो पत्र है श्रीमती का, जिसमें आत्मा ठर जाए ऐसा सत्संग रूप साधन, उसकी रुचि संसारी जीव को नहीं होती। आत्मा शांत 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 आत्मिक शांति में आ जाए, जिसका साधन सत्संग है, वो नहीं रुचता है जीव को संसार में। कैसे कैसा प्रयास है, किस प्रकार का ये प्रयास है? उसकी रुचि संसारी जीव को नहीं होती, ये आश्चर्य है। शांति मिले फिर भी इसकी रुचि नहीं हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये गंभीर विचारने का स्थल है, स्थान है। ऐसा क्यों? तात्पर्य यह है कि आत्मा से जीव को सत्संग को कभी गौण करने योग्य नहीं, दुर्लभ से भी दुर्लभ ऐसा सत्संग रूपी अमृत परम आदरणीय है। सत्संग दाता सत्पुरुष तो निरंतर अमृत पिलाते हैं, और भव्य जीव पी करके अमरत्व को प्राप्त करता है। तो जिसका मूल्य कैसे हो, इसका मूल्य कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। मैंने सत्संग पर वजन है, जिससे अमृत मिलता है,
सुहाता है वैसे सत्संग सुहाना चाहिए।
जेमा आत्म शांति पहुंचवाना एना जेवो कोई साधन नहीं, सत्संग के बराबर। आत्म शांति पाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं, सत्संग में क्या करेगा? मुमुक्षु को क्या, कोई परिस्थिति क्या है? उदय तो चालू है, निरंतर चालू है। सत्संग कोई लाना नहीं पड़ता, ऐसा सत्संग तो कोई लाना नहीं
पड़ा है उसी में,
चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसे जैसे दुश्मन से चारों ओर से कोई घिरा हुआ हो, ऐसे एक ही बीच में कोई आधारभूत कोई चीज है तो वही है जहाँ से आत्म शांति मिल सकती।
सत्शास्त्र है, देवगुरु है,
तो पहचान हो तो दूसरी बात है। ओक संज्ञा में तो क्या मानूंगा, देवगुरु शास्त्र है तो, लेकिन ओक संज्ञा में क्या मिलेगा? पहचान है तो दूसरी बात है।
सत्संग के बिना तो पहचान भी नहीं हो सकती,
नहीं होती है। इसलिए तो इसका मूल्य है इसका इतना। बिना सत्संग तो पहचान भी नहीं होगी, तो उसमें भी मूल्य तो सत्संग का ही हो गया ना।
प्रसिद्ध सत्संग जिसको फोन करके कोई देव शास्त्री गुरु का उपासना कर ही नहीं सकता, तो वही रहे।
प्रश्न है,
कल्पना भी जरूर है।
इसलिए तो 269 में कहा कि मोक्ष से भी हमें तो संत चरण की समीपता अधिक प्रिय है। क्या लिखा? तो देव है वो तो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, अभी तो कोई मोक्ष है नहीं। मोक्ष तुल्य कोई है तो भगवान की प्रतिमा है, मुक्त स्वरूप है। देर में स्थान अभियंत पर, लेकिन जवाब तो देगा नहीं। जगत के किसी भी रत्न से सत्संग का मूल्य अब कितना है? जैसे एक जमाना था जो सत्संग के लिए, जैसे बड़े बड़े लोग जाते थे जंगल में, और उपवन में कहीं भी जिस काल में महालिंगी संत मिलते थे, भले उपदेश नहीं देवे, जरूरी नहीं कि वो जावे इसलिए कोई उपदेश देवे, लेकिन वो तो दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाते थे, पहचानते ना वो मूर्तिमंत मोक्ष दिखता है उसको। का मूल्य भी कैसा आएगा? जो बच्चा 100 के नोट का कितना कीमत है पहचानता नहीं, उसके पास 10,000 का यूनिट रख दो घड़ी, तो खेलने लगेगा। तो खेलते खेलते कहीं और फेंकेगा या फाड़ेगा।
जो बार बार निधि ध्यान मुख मुद्रा के निधि ध्यान की जो बात आती है कृपण कृपण देव के पत्रों में, उसका एक्चुअली उसका उसका भाव भाषित नहीं होता है कि मुख मुद्रा
तो नजर का तो चीज है, नजर की तो चीज है। जैसे हम बाबू जी के साथ बहुत कम रहे, ये लोग तो काफी रहे, लेकिन हमको जो चीज नजर में आती है वो हम देखने में, हम कैसे देखने में आप, तो उसके लिए तो पर्टिकुलर एंगर होता है उनको, तो उसका हाल चाल में मस्त दिखती है, चलते साथ में घूमने तो जाते हैं शाम को कभी शाम घर में। ये तो चीज नजर की तो है, पर ना तो क्या है, मनुष्य तो मनुष्य आकृति से भी प्रकार का मनुष्य आकृति से क्या उसमें दूसरा
फर्क तो जुदा स्पष्ट भाषित होता है,
वो होता है।
लेकिन जो कपूर जी कहते हैं बार बार निधि दर्शन करने से अपूर्व रहस्य जो समझ में आते हैं
उसका अंतर्मुखता का पता चलता है। ये तो मूर्तिमंत मार्ग ही है, जो मार्ग नहीं मिला अरूपी मार्ग है, अरूपी मैंने अमूर्तिक है, ये मूर्तिमंत है अवस्था है, मूर्ति होने पर भी ये मूर्ति मिलते हैं, मैंने कुछ अंश में और ये उम्र के बाहर आता है प्रत्यक्ष जाता है, यही फायदा है। निकी मानी द्रव दृष्टि प्रकाश में और ये बोले बैठे, कैन नॉट बी कंपेयर विद कंपेरिजन हो सकते प्रत्यक्ष परोक्ष इतना बड़ा अंतर
विलक्षण चेष्टाएं विलक्षण प्रकार विलक्षण वैराग्य उपसंग आँखों में वैराग्य ये सब चीज़ें हैं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है लेकिन उसके बावजूद भी जो अंतरपरंति का जो रहस्य है उसको समझने के लिए जो दृष्टि जो एंगल चाहिए
तो आत्मभाव की पहचान आती है आत्मभाव क्या है जैसे राग भाव की पहचान आती है कि नहीं जैसे कोई आदमी रस से खाता हो
पहचान आती पहचान आती
नहीं नहीं बोले वो तीव्र रस से खाता हो तो उसका राग पता राग का पता चलता है क्यों कि ये परिचित चीज है इस भाव का हमें परिचय है तो दूसरों का भाव का हम बिना बोले बिना कहे अंदाजा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते कि ये आदमी की ऐसी प्रकृति है वो ऐसी प्रकृति वाला है वो ऐसी प्रकृति वाला है पता चलता है कि नहीं चलता है
चलता
ऐसे उसमें तो भाव व्यक्त हो गई तो बिना बोले जब पहचान होती है पता चलता है तो ये तो बोले ना तो उसका फोर्स भी बाहर आता है સત્પુરુષોનો અનુભવ અને તે પૂર્વક નિષ્પન્ન અભિપ્રાય એ છે કે અનંતકાળે દુર્લભ એવા સત્પુરુષના યુગે જો તેમને ઓળખાણ થાય તો જેને ઓળખાણપૂર્વક પરમ ભક્તિ થઈ છે તેવા મુમુક્ષુ જીવને તેવી દશા અવશ્ય સંપ્રાપ્ત થાય છે इसलिए 751 में तीनों ने जुड़ा है प्रश्न कारण कार्य
तीन प्रकार के संदर्भ
परम पदार्थ ना निश्चय ना कारणभूत स्वरूप निश्चय का कारणभूत परम पदार्थ का निश्चय निश्चय ना कारणभूत परमार्थ ज्ञानी पुरुषों नो निश्चय परमार्थ ज्ञानी पुरुष नो निश्चय थवाथी जीव ने समस्त संसार अपरमार्थ रूप भासे छे એને આત્મકલ્યાણ કેમ કર્યું કેમ થાય છે એ જ્યારે નજરમાં આવ્યું ત્યારે આખો સંસારમાં અકલ્યાણ શું છે સંસાર આખો અકલ્યાણ સ્વરૂપ છે સંસારની તમામ પરિસ્થિતિ આત્માના કલ્યાણથી વિરુદ્ધ જાય છે સમસ્ત સંસાર અપરમાર્થ રૂપ પાસે છે તેથી સંસારી સુખ ભ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ પાસે છે પછી જે સંસારનું સુખ છે ભ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ પાસે છે તેથી આત્માર્થીને તેવા સંયોગોની અનુકૂળ સંયોગોમાં ભ્રાંતિ પણ સુખ ભાસે છે ને, એટલે તેથી આત્માર્થીને તેવા અનુકૂળ કરીને પ્રશ્ન ચિહ્ન હોય પાસે, કેમ કે અનુકૂળ નથી કઈ, અનુકૂળ કેમ કહેવું એને, અનુકૂળ સંયોગોની પ્રાપ્તિમાં પણ નિરસપણો અને ઉદાસીનપણો રહે છે. જેથી એમ લાગે છે કે પરમાર્થ જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ એ સ્વરૂપના સંસ્કાર વત નિષ્ફળ ન જાય અથવા ન થાય. સ્વરૂપના સંસ્કાર જેમ નિષ્ફળ ન જાય એમ જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ એ નિષ્ફળ ન જાય. આરક્ષણ છે તો કે એ ન થાય તો શું થવું જોઈએ, તો કે કમ સે કમ સ્વરૂપ નિશ્ચિત, તો કે એ ન થાય તો શું થવું જોઈએ. એટલે મારી પાસે સમ્યક દર્શન ખરીદવાની મૂડી નથી, ઓછી મૂડીમાં શું મળે, સ્વરૂપનો ભાવ પાસે, તો કે એટલી પણ મૂડી ન હોય તો શું મળે, તો કે સત્પુરુષને ઓળખાણ. એટલે તો એને એની વિધિ માનતાની કિંમત છે, વાણી ઉપરથી ઓળખી જાય. વિશિષ્ટ પ્રજ્ઞાવંત બાકી તો વિદ્યમાનતા વગર ઓળખાય.
એમ સંસ્કાર આગલા ભાવમાં પણ સર્વે કામ અર્થ કરે છે,
પરમાર્થ જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય થવાથી જીવને સમસ્ત સંસાર અપરમાર્થ રૂપ હશે છે. તેથી સંસારી સુખ ભ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ પાસે છે, પછી સંસારનું સુખ છે એ ભ્રાંતિપણે જાણેલું સુખ પાસે છે. તેથી આત્માર્થીને તેવા સંયોગોની પ્રાપ્તિમાં પણ નિરસપણે ઉદાસીન પણ હોય છે. રિવર્સ સાઈડ શું છે કે આત્મ અકલ્યાણમાં સંસારી જીવો પરિણમી રહ્યા છે.
બરાબર,
આખો સંસાર આત્મ અકલ્યાણ કેવી રીતે કરે છે અને આ આત્મકલ્યાણ એક કેવી રીતે કરે છે, સામે સામે આવી ગયો.
આ ભાષે છે, સમજ્યા છે, વિચારવામાં વાત નથી,
ભાષે છે, ભાષે છે, બે ભાષે જ છે, બે નો ભાવ ભાષણ જ છે. અકલ્યાણ નો પણ ભાવ ભાષણ છે, કલ્યાણ નો પણ ભાવ ભાષણ છે. તો પોતાને પણ અકલ્યાણ નથી થતું એનું કારણ શું છે, નિરસ્તા કેમ આવે કે અકલ્યાણ થાય છે, માટે નુકસાન થાય છે તો હટે છે. નુકસાનીથી કોણ ન હટે, નુકસાનીનું જ્ઞાન નુકસાનીથી હટાવે છે. એક માણસ વેપાર કરે છે તો ભાવ વધે છે તો એનું ક્વોન્ટમ વધી જાય છે, વોલ્યુમ બજાર ઘટતી હોય તો એનું ક્વોન્ટમ ઘટી જાય છે વેપાર. टर्नओवर घटी जाए छे अपने के नुकसान थाय छे
योग
तो अनंत बार मिला है, पहचान एक दफे भी नहीं हुई है, ये तो पोजीशन रही है, पहचान करने को पात्रता चाहिए, अपनी योग्यता कभी नहीं काम है। जब समझ में उतनी बात आती है तो फिर सतर्क हो जाए
ओळखाण थवू એટલે તો સંસાર સિવાયની કોઈ વાતોને પ્રગટ થવું સદગુરુ પાસે એવું લાગે અને
એ તો સદપુરુષ પાસે તો એ જ વાત હોય ને એ વાત સંસાર જેમ કે આ મોક્ષ માર્ગનો વિષય છે તો મોક્ષ માર્ગનો વિષય શાસ્ત્રમાં છે શાસ્ત્ર ભણે છે એવા વિદ્વાનો થી પ્રગટ થાય છે અને જ્ઞાનીઓથી પ્રગટ થાય છે તો ત્રણ સ્થાનમાંથી આ એક જ સ્થાન બરાબર છે એ તો ઓળખાણ વગર કેવી રીતે એને સ્પેસિફિક કેવી રીતે સ્પેસિફાય કેવી રીતે કરે ઓળખાણ વગર પોતે અનંતવાર નથી ઓળખાણ થઈ એ શું બતાવે છે તીર્થંકર અનંતવાર મેળા મહાલિંગી સંત અનંતવાર મળ્યા સંતોષ અનંતવાર મળ્યા ઓળખાણ એક વાર પણ નથી થઈ શું બતાવે છે પોતે યોગ્યતામાં એક વાર પણ એ યોગ્યતામાં એક વાર પણ આવ્યો નથી પરમાર્થ જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ એ સ્વરૂપના સંસ્કારવત નિષ્ફળ ન જાય કે નિષ્ફળ ન થાય તેવા પ્રકારના જીવના પરિણામ છે અર્થાત તે જીવે જ્ઞાની પુરુષના દર્શન કરતા આત્મરુચિ ભાવે સંસ્કાર પ્રાપ્તિ કરી છે પરમાર્થ વડનું બીજ છે
આજે રહેશે છે ને આજે આ એકલા બીજે રહેશે છે આ કોઈ ઠીકાણે નથી મળે જોવા
પરમાર્થ વડ કેવળ જ્ઞાન સુધી નું બીજ અહીંયા પડ્યું છે સત્પુરુષ નું ઓળખાણ તેમાંથી મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ ની સર્વ દશાઓ અવશ્ય પાંગરશે આમ જ્ઞાની પુરુષ ની ઓળખાણ રૂપ શ્રદ્ધા રૂચિ પછી એનો ફક્ત શ્રદ્ધા થઈ ગઈ ને શ્રદ્ધાનું આ ફળ છે તે પ્રત્યે લક્ષ કરાવનાર નિષ્કારણ પૂર્ણા મૂર્તિ સત્પુરુષના ચરણાધીનો પ્રમૂર્તિ પ્રેમ શ્રેષ્કાર છે
बोलता के पहले भक्ति तो हो नहीं सकता, बिना और खान वास्तविक भक्ति तो नहीं हो सकता। जाने
और भक्ति किया है और भक्ति तो होती है, दोनों में अंतर है। बात भक्ति हो सकती है, पहचान वाली भक्ति अलग चीज है, वो अलग चीज है।
ओळखाण ने प्राप्ति ની વચ્ચે નો સમય એટલે ભેદ તો છે, સમય નો કાળ ઘણો ઘણી વખત હોય,
પ્રાપ્તિ એટલે અનુભવ, પ્રાપ્તિ
ઘણો સમય વચ્ચે હોય છે। ઓળખાણ થઈ જાય ત્યારે નક્કી કરી શકે,
ભાવ પાસે યુદ્ધાન દર્શન હોય છે, ત્રીજા પ્રકરણ ત્રીજું આખું ચેપ્ટર એના પર લખેલું છે, એના પર ચિહ્નો છે, પુરુષાર્થ શરૂ થાય છે, स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति रखा है 751, स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति उसी का नाम पहचान। आत्मा की पहचान उसकी जितनी सामर्थ्य है अनंतानंत उतने पहचान में आई है, और दूसरी ओर दीनता के परिणाम भी मिटे नहीं, मेरा ऐसा रूप कि जिसका सामर्थ्य अनंत अनंत, कितना जोर से धक्का लगे उस परिणाम कैसे सम्यक दर्शन होगा। होता है, सहज रूप से करना नहीं पड़ता, अनुभव करना नहीं पड़ता। अनुभव हुआ नहीं हुआ मत देख, कहां से निकलेगा? अनुभव हुआ नहीं हुआ मत देख, उसका मतलब क्या है? चिंता नहीं है इसके लिए। एक चीज जो दिखने में आई अंदर, फिर चिंता का परिणाम को कितना जोर से धक्का देता है, वो क्या से टिकेगा, कहां तक टिकेगा? जो खुद ही निराधार हो गया, निराश्रय हो गया, वो तो जहां तक टिकता था जब उसमें हम मैं ऐसा होता तब तक अपना अनंत सामर्थ्य वाले का सपोर्ट था तो वो जिंदा रहता है। अभी वो अनंत सामर्थ्य वाला उसको धक्का देता है, कोई उसको आश्रय नहीं है, निराश्रय है, कहां से जिंदा रहेगा?